ओम शांति। एक महिला किसी मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां खरीदती है, क्योंकि उसकी जो बेटी है बहुत बीमार है, बुखार चल रहा है, तेज बुखार। तो किसी दुकान से वो दवाइयां लेती है और जल्दी जल्दी बाहर आती है और अपनी कार खोलने की कोशिश करती है, परंतु पाती है कि उसने कार की चाबी अंदर ही रख दी है और कार लॉक हो गई है। तो उसे बहुत चिंता होती है, अब क्या करे। और फिर फोन आता है कि बुखार और ज्यादा बढ़ रहा है, तबीयत और खराब हो रही है। तो उसे और ज्यादा चिंता हो जाती है, अब कैसे करे, इतना दूर अंतर बड़ा ज्यादा है और कार तो बंद हो गई है। तो वो कहती है क्या करूं। तो घर से जो नौकरानी होती है वो कहती है ढूंढो कुछ, कोई तार, कोई वायर, कोई हैंगर, कुछ तो मिल जाए, उससे तुम उसको खोलने की कोशिश करो। तो वो ढूंढती है यहां वहां और उसको एक तार मिलता है, पर उसे ये नहीं समझ में आता है इसको खोलूं कैसे। उसने ऐसे काम कभी किए नहीं थे। और फिर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु कुछ तो मदद कर, कुछ तो कर और जल्दी कर जो भी करना है। और थोड़ी देर में मोटरसाइकिल लेकर एक बड़ा ही खूंखार सा व्यक्ति वहां आता है, गाड़ी रोकता है, पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि मेरी कार नहीं खुल रही, चाबी अंदर रह गई है। तो उसके हाथ में वो तार होता है, वो कहता है मुझे दो, और वो फटाफट खोलता है उसको और कार खुल जाती है। तो वो कहती है कि आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप जैसे अच्छे व्यक्ति इस दुनिया में आजकल कहाँ है। और वो भगवान को भी धन्यवाद कहती है, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया कि आपने ऐसे मौके पर इस ऐसे नेक इंसान को भेज दिया, भले मानुष को। वो कहता है मैं नेक भी कुछ नहीं हूं, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, आधे घंटे पहले जेल से छूटा हूं और मेरा काम है कारों को चुराना। तो वो कहती है भगवान को, भगवान तेरा और ही ज्यादा धन्यवाद, तूने ऐसे पेशेवर प्रोफेशनल व्यक्ति को भेजा मेरी मदद के लिए। तो उसकी याद से उसकी मदद आती है, गॉड की याद से क्या हो जाएगा, सब कुछ गुड हो जाएगा और गुड हो जाएगा, गुड बन जाओगे। तो गॉड की याद, एक साधारण सा व्यक्ति जो शायद भगवान को न जानता है, वो भी जब भगवान को सच्चे दिल से याद करता है तो ऊपर से कहीं ना कहीं से मदद तो आती ही है जरूर। तो वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को जान लिया, पा लिया, समझ लिया, जो भगवान से मिलती है, भगवान से बातें करती है, भगवान को जिन्होंने कई वो बार देखा है, ऐसी आत्माएं जब उस परमात्मा को पुकारेगी तो क्या वो नहीं आएगा। तो कल सुबह की जो अव्यक्त वाणी थी उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसमें भी जो दूसरा भाग है जिसमें क्या कहा बाबा ने कि दुनिया वालों की कौन सी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, और तुम्हारी कौन सी मॉर्निंग है, गोल्डन। तुम्हारी कौन सी मॉर्निंग है, गॉडली मॉर्निंग है। क्यों गॉडली मॉर्निंग है, क्योंकि रात भी गॉड के साथ, सुबह भी गॉड के साथ। तो तुम्हारी गॉडली मॉर्निंग, गॉडली इवनिंग और गॉडली नाइट। और गॉड की याद में रहोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो एक गॉड की याद में रहना। इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ ही है याद, इस ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है याद और सबसे बड़ा पाप है विस्मृति। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? विस्मृति, भूले हुए रहना। और जो याद में है सबसे ज्यादा शक्ति जमा कर रहा है, इसके लिए सूक्ष्म याद की निरंतर धारा अंदर बहती रहे। और याद कैसी हो, ये हमेशा से ही प्रश्न पूछा गया है, कैसे याद करे, किस रीति से याद करे, किस विधि से याद करे। याद की विधियां बहुत सारी हैं, याद के अभ्यास बहुत सारे हैं, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अलग अलग ढंग से बाबा को याद करती है, कभी संबंधों के आधार पर, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी परम धाम में, तो कभी और किसी रीति से। तो हम याद की कुछ विधियां देखेंगे। एक याद का रूप है, उसको देखना। याद की एक विधि क्या है? केवल देखना उस ज्योतिर्मयी परमात्मा को, देखते रहना और कुछ नहीं करना, केवल देखना। ज्योतिबिंदु शिव बाबा और मैं आत्मा उसे देख रही हूं। क्यों देख रही हूं? क्योंकि उससे अधिक सुंदर इस संसार में और कोई नहीं। वो सत्य है और वही शिवम और वही सुंदरम। उसको देखते रहना। और कैसे देखते रहना? स्थिर होकर देखते रहना। एक है याद में इतना खो जाना कि शरीर स्थिर हो जाए, दूसरा है पहले शरीर को स्थिर कर देना फिर याद में खो जाना। कई सारे धर्मों में जो ध्यान की पद्धति है उसमें सबसे पहले शरीर को स्थिर करने की विधियां बताई है। शरीर को स्थिर करना अर्थात एक आसन में स्थिर कर देना। और जैसे ही एक आसन में स्थिर किया जाता है शरीर को, संवेदनाएं चालू हो जाती है, खुजली, मच्छर, मुंह में पानी, जबान की हलचल, इधर उधर या इधर उधर देखना, कौन आया कौन नहीं आया, बुलाना, उंगली, हाँ ये उंगली ऐसे 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 सही लाना, ये सारी संवेदना है। जब तक इन सभी को रोका ना जाए शरीर स्थिर नहीं होता है। और ये सभी रोकी जा सकती है, जैसे इनका योग से डायरेक्ट संबंध नहीं है, परंतु शरीर की स्थिरता का संबंध योग से है। देह जहां स्थिर होगा वहां आत्मा भी स्थिर होने लगेगी। इसलिए जब योग में बैठे तो ऐसे बैठ जाना कि शरीर स्थिर हो जाए। हाथ जहां रख दिया वहां रख दिया, फिर वो हिलाते रहना, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। आत्मा कैसे प्रतिबिंबित होगी हिलते हुए शरीर में? वो तो फिर दिन भर तो कर ही रहे ना, चलते फिरते याद है। परंतु अमृत वेले का योग और नुमाश्याम का योग, देह को भी स्थिर करने का अभ्यास करना है। तो एक विधि है स्थिर बैठ जाना। जैसे व्यक्ति जब संगली पर बैठकर योग कराता है तो बहुत ज्यादा स्थिर बैठता है, और वही जब सामने आके बैठता है सभा में तो हिलना डुलना चालू करता है। क्यों? हाँ, देखने वाले बहुत है, तो हम भी तो स्टेज पर है और हम निरंतर स्टेज पर है, सारी दुनिया देख रही है। तो स्थिर करना, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और सामने एक व्यक्ति बैठा था, अभी अभी जो भिक्षु बना था, और वो अपनी उंगली ऐसे ऐसे कर रहा था पैरों की। तो महात्मा बुद्ध रुक गए, प्रवचन बंद, पहले वो स्थिर हो जाओ, उसके बाद में चालू करूंगा। बोलते बोलते ही रुक गए। ये हिलना अर्थात व्यक्ति स्थिर नहीं है, उंगलियों का हिलना अर्थात मन स्थिर नहीं है। तो एक विधि है याद की, देखना, केवल देखते रहना उस ज्योतिर्मय परमात्मा को, केवल और केवल देखते रहना। दूसरी विधि बात करना, बाबा से बात करना। क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? उसे बहुत सारी चीजें बताना जो हमने आज तक किसी भी देहधारी को नहीं बताई या बताना से बताने से कतराते हैं, और उससे कुछ भी छिपा नहीं है, परंतु उसके सामने हम हमारा जीवन स्पष्ट हो, ऐसा कुछ भी ना हो जीवन का जो हमने उसे नहीं बताया हो। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो, कैसी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कुघटनाएं घटी हो, परंतु बयां कर देनी, बता देना कि ये हुआ था, तो मन हल्का हो जाएगा। नहीं तो हर व्यक्ति एक सूक्ष्म बोझ लिए घूमता है, और एक समय आएगा जब बाबा बैठा है और बाबा के सामने केवल ब्राह्मण आत्मा है, और सभी रो रहे हैं और सभी बाबा से माफी मांग रहे हैं, बाबा माफ कर दो बाबा, ब्राह्मण बनने के बाद, तेरे यज्ञ में स्वाहा करने के बाद हमने स्वयं के जीवन को उतना श्रेष्ठ नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए था, या तेरा बनने के बाद भी ये सारे पाप हो गए। वो सभा कौन सी होगी? ब्राह्मणों की। और बाबा क्या करेगा उस समय? कोई किसी से मतलब नहीं, संपूर्ण साक्षी, संपूर्ण साक्षी, जो जिसने किया वो पाएगा। तो ऐसा भी समय आएगा तो बाप से बात करनी, उसे दिल का हाल सुनाना। और हर आत्मा एक गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ जीती है, एक अपराध भाव, किसी का ज्यादा है, किसी का छोटा है, किसी का पाप छोटा है पर अपराध भाव बड़ा है, किसी का पाप बहुत बड़ा है परंतु अपराध भाव बहुत छोटा है, पर वो है जरूर और छिपा है। इसलिए उसे सब कुछ बता देना, ये भी याद की विधि। तीसरा है उसको सुनना, वो क्या कहता है। मुरली सुनना अलग, योग में उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना, वो मुझसे क्या कुछ कह रहा है, मेरे लिए उसके क्या शब्द है, मेरे लिए उसकी क्या श्रीमत है, मत है, डायरेक्शन है, वो मुझे क्या कह रहा है। जितनी स्थिति सूक्ष्म होगी उतनी ही उसकी आवाज हम सुन सकेंगे, जितनी स्थिति अव्यक्त होगी उतनी उसकी आवाज सुन सकेंगे। कल जो अव्यक्त वाणी चली शांतिवन में, उसमें बाबा ने कहा ये परमात्मा प्रेम दो चीजें कर देता है, क्या क्या? अशरीरी बना देता है और तुमको व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त भाव में स्थित कर देता है। और ये झूला भी है, झूलते हो इसमें। तो उसको सुनना क्या कहता है। पॉइंट्स का सागर है वो पॉइंट। आज कहा ना, मैं तुमको अथाह पॉइंट से सुनाता हूं, ढेर पॉइंट्स है, मिस मत करो, एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि पॉइंट्स ढेर सारी है। वो पॉइंट पॉइंट्स का सागर है। तो बाबा की महिमा में ये एक महिमा और जोड़ दे, कौन सी? पॉइंट्स का सागर। बिंदु क्या है? वो बिंदुओं का सागर, ओशन ऑफ पॉइंट्स, ओशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग का सागर है, वो धैर्य का सागर है, वो निर्मोह का सागर है, वो साक्षी का सागर है। ये सब उसकी महिमा है। मुरलियों का सागर। तो उसको सुनना, फोर्थ उसको फील करना। कितनी गहराई से उसको हम फील कर रहे हैं, उसके प्रेजेंस को, उसके अस्तित्व को, उसका वो वजूद। फील करना उसको योग में, योग में। और पांचवा, उसकी किरणों को आत्मा में धारण करना। इस तरह से योग में पांचों ही बातें करनी है। बात करना है, सुनना है, देखना है, फील करना है, और उसकी किरणों को, उसकी शक्तियों को स्वयं की आत्मा में ग्रहण करना है, धारण करना है। वो यदि प्रेम का सागर है तो मैं आत्मा उसके सम्मुख बैठी हूं और प्रेम की सारी किरणें मुझे आत्मा में समाएगी। वो यदि मौन का सागर है तो उस मौन के सागर से मौन की किरणें मुझ में समा रही है। उसकी नई नई महिमा गाना रोज, एक ही प्रकार की महिमा नहीं, नई नई महिमा, उसके नए नए रूपों को समझना। तो गॉड की याद में रहेंगे तो क्या बनेंगे? गुड। और दो चीजें तुम्हारी गुड है, एक है संकल्प और दूसरा है समय। जब याद में रहोगे तो ये दोनों चीजें गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। समय, उठते हो तो गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। तो उठते ही क्या संकल्प, सोते हैं तो क्या संकल्प। दादी प्रकाशमणि जी को किसी ने पूछा था, दादी आपके पास कितने लोग आते होंगे अपनी अपनी समस्याएं लेके, इतना बड़ा यज्ञ, इतने सारे सेवा केंद्र, इतनी सारी बातें, इतनी सारी टीचर्स बहने, आपको नींद आती है रात में? दादी ने कहा था, मैं बाबा को गुड नाइट करती हूं और लेट जाती हूं और 30 सेकंड के अंदर मुझे नींद आ जाती है। ऐसा हल्कापन, वो ऐसी सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति अंदर की, जहां मैं जो है ये गिर चुका है, मैं रहा ही नहीं है, सब उसका कार्य है, वो करा रहा है। ऐसी गहरी आंतरिक निरंकारिता की स्थिति। तो हर समय गुड, हर समय गॉड के साथ, और हर संकल्प गॉड के साथ और गुड। हर संकल्प, बाबा कहते हैं संकल्पों का भोग लगाओ। तो ये संडे की मुरली में एक बात थी। दूसरी बात, झंडा लहराया तो क्या कहा? गीत के ऊपर बाबा ने कहा, क्या कहा, कौन सा गीत बजता है? तो बाप कहते हैं, बच्चों का झंडा उच्च महान। कौन सा झंडा बाप दादा देखना चाहते हैं? मस्तक में और नैनों में विजय का झंडा, विजय, जीत, जीत प्राप्त करनी है। किस पे? स्वयं पर। किस पे? ब्राह्मण जीवन में कौन सी विजय प्राप्त करनी है? ब्राह्मण जीवन में 7 प्रकार की विक्ट्री है, 7 टाइप ऑफ विक्ट्रीज। सबसे पहली जीत विकारों पर। मां की मुरली है सुबह की, सारा संसार जकड़ा हुआ है विकारों में। आज सुबह है ना, पूरा पूरा वश में है विकारों के, पूरा पूरा विकार समाये हुए हैं संसार में। विषय वैतरणी नदी तुम्हारे, तुम ब्राह्मणों के अतिरिक्त बाकी सब मरे पड़े हैं। छी छी दुनिया, छी छी काम तुमको नहीं करने, विकारी दुनिया है, रव रव नरक है। सबसे पहली विजय आज भी कहा, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, कौमा, इस पर जीत पाओ, फुल स्टॉप। इसको जीतना है, दमन नहीं, जीत, उसके बाहर निकल जाना, ऊपर निकल जाना। तो सबसे पहली जीत जो है इस जीवन में वो है स्थूल 5 विकार, फिर सूक्ष्म 5 विकार और रॉयल माया। किसी मुरली में बाबा ने माया के 3 रूप बताए थे, एक तो 5 विकार, फिर सूक्ष्म माया, क्रोध नहीं है पर चिड़चिड़ापन है, काम नहीं है पर कामनाएं हैं, लोभ नहीं है पर क्या है, मोह नहीं है पर अच्छा लगता है, विकारों पर जीत। दूसरा है इंद्रियों पर जीत, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना है। इंद्रिय बड़ी ही उपद्रवी है, बहुत हलचल करती है, और सबसे ज्यादा उपद्रव कौन करता है? आंख। आंखों ने फल देखा, आंखों ने क्या देखा? फल। पर आंखें तो चल नहीं सकती, इसलिए पैर गए झाड़ के पास, पर झाड़ तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने तोड़े, पर हाथ तो खा नहीं सकते, इसलिए मुंह ने खाया, और मुंह ने फल खाकर फल पेट में गया, परंतु माली ने देख लिया और कहा मारा कमर पे, जिसका कोई दोष ही नहीं था। कहां पर मारा? पीठ पर, जिसमें इसका कोई हाथ नहीं था, परंतु आंसू आंखों से आए, जिसने देखा था। देखने वाली कौन थी? आंखें। आखिर आंसू कहां से आए? वहीं से आए। सी नो इवन। आज की मुरली तो इंद्रियों पर जीत, रसेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। इस संसार में सबसे शक्तिशाली वही है जिसने इंद्रियों को जीता है। अपनी इंद्रियों को जीतना, आंखों को, कान को, नाक को, इस त्वचा को, जिह्वा को, वही मास्टर सर्वशक्तिमान। और जो इनके अधीन है वो शक्तिशाली नहीं। तो दूसरी विजय है इंद्रियों पर विजय। तीसरी विजय है व्यर्थ और नकारात्मकता पर, वेस्ट और निगेटिव। यदि हम अपने ही विचारों को देखें 24 घंटे, कितने उसमें व्यर्थ है और कितने उसमें निगेटिव है, कितने विचार है वो केवल अतीत की यादों में बिता रहे हैं, एक द्वंद की अवस्था में हर मनुष्य, एक मन कहता है ये करूं, दूसरा कहता है नहीं, आंतरिक द्वंद है। उसे पता है श्रीमत ये है, परंतु फिर भी नहीं कर पाता है फॉलो उस श्रीमत को, द्वंद है। एक कदम पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है तो एक कदम पीछे भी बढ़ता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, इसी का बैलेंस चालू है इतने सालों से। इसलिए जहां 10 साल पहले था आज भी वही है, क्योंकि कदम तो आगे बढ़ा परंतु फिर कोई पाप कर लिया और एक कदम पीछे, एक कदम आगे बढ़ाया फिर एक कदम पीछे, बटा है, दो नाव में पैर है, चिर जाएगा। जैसे ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति अचानक उठता है, रात को ट्रेन चालू है, नीचे की बर्थ पर जो व्यक्ति बैठा है उसको पूछता है आप कहां जा रहे हो, नीचे वाला कहता है मैं चेन्नई जा रहा हूं, ऊपर का व्यक्ति कहता है विज्ञान भी अद्भुत है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, विज्ञान का चमत्कार को देखो कि नीचे की बर्थ चेन्नई जा रही है और मैं जो ऊपर बैठा हूं मैं दिल्ली जा रहा हूं और आराम से सो जाता है। गलत ट्रेन में बैठा है और इसको क्या कहता है, विज्ञान का चमत्कार। यहां मनुष्य का चमत्कार है, एक बर्थ दिल्ली जा रही है और एक बर्थ चेन्नई, एक मनमत एक परमत, एक विचार अतीत में भटक रहे एक भविष्य की चिंताओं में, और हम कहते चमत्कार है ड्रामा का। पर कहीं वो मैं तो नहीं जो ऊपर बैठा है और ट्रेन ही गलत है। परंतु जब भी ये पता चल जाए, साहस की किसी ने परिभाषा दी है कि जब ये पता चल जाए कि गलत दिशा में हो तो रुक कर पीछे मुड़कर आ जाना, ये है साहस। गलती हो रही है, साहस की परिभाषा क्या है, यहां जाना था उधर चले गए, अब वहां रुक के पलट के वापस यहां आ जाना, ये है साहस। जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं कहीं वो गलत तो नहीं, ये स्वयं की चेकिंग। तो तीसरी विजय है व्यर्थ पर और निगेटिव पर। कारण क्या है, स्रोत क्या है, कहां से उगम हो रहे हैं, उगम स्थान कौन सा है निगेटिव का। क्यों ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर अचानक उसके प्रति निगेटिव ही निगेटिव चलता है, सब कुछ करने के बाद भी पॉजिटिव नहीं चलता, क्यों? निगेटिव का सोर्स क्या है, क्या है निगेटिव, कहां से आता है वो छोड़कर, क्यों निगेटिव, निगेटिविटी के कारण क्या है जीवन में, अपने को ज्यादा होशियार समझना और दूसरों को कम आंकना, इसको कहते हैं श्रेष्ठता ग्रंथि, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, होलियर देन थाउ एटीट्यूड, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं ये भाव। निगेटिव का कारण है ईर्ष्या, निगेटिव का कारण है कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, निगेटिव का कारण है हम में कुछ कमी है, निगेटिव का कारण है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, निगेटिव का कारण है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, निगेटिव का कारण है उदासी, निगेटिव का कारण है अतीत बड़ा ही दर्दनाक है, निगेटिव का कारण है भय, अंदर भय है, भय अज्ञात से भय समाये हुए, मेरे पास ये सब है ये छिन गया तो, भय डर सा है एक, और हमारे अंदर बहुत सारे डर है, सूक्ष्म डर विज्ञान में, मेडिकल साइंसेस में फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड, उस पे उसके पास यदि कोई रोगी आता था तो वो जो कुछ कहता था, कहता ये सब झूठे, ये तुम्हारी बीमारी, मुझे तुम अपने स्वप्न बताओ क्या है, केवल स्वप्न। जो उसके स्वप्न होंगे गहरे से गहरे, वहां वो व्यक्ति छिपा हुआ है, बाहर कुछ भी कहे वो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो सब दिखा हुआ है। व्यक्ति अपने पिताजी के पैर पड़ रहा है और अंदर उसे मारने की विचार है। क्योंकि जो दिखा रहा है वैसा है नहीं, बाहर से ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचर्य है, अंदर से काम धक्के दे रहा है। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, पर स्वप्न को अभी तक धोखा देना वो सीखा नहीं है, स्वप्नों को अभी तक उसने धोखा नहीं दिया है। तो कहां समाया हुआ है नेगेटिव और कहां समाया हुआ है व्यर्थ, उसकी खोज करनी है स्वयं के अंदर। बड़ी गहरी खोज है पर करनी पड़ेगी। हम स्वयं को नहीं देख पाते, जिस दिन देख पाएंगे धीरे धीरे खुद को समझ पाएंगे, और सारी यात्रा आंतरिक है। अपने आप को सूक्ष्म गांठों से, ग्रंथियों से मुक्त कर पाएंगे। शायद हमारी जो विधि है वो गलत है। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार सभा में आते हैं, एक रुमाल साथ में लाते हैं और उस रुमाल में गांठें बांधना चालू करते हैं बहुत सारी, और पूछते हैं पहला जो रुमाल था और इस रुमाल में क्या अंतर है। कोई कहता है पहला जो था उसमें गांठें नहीं थी, अभी इसमें बहुत सारी गांठें हैं, परंतु रुमाल तो रुमाल ही है, रुमाल अब भी वही है परंतु अंतर है। तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अभी इसको पहले जैसा कैसे बनाया जाए, क्या करना पड़ेगा, गांठें खोलनी पड़ेंगी, कैसे खींचेंगे उसको तो खुलेगी क्या, और पक्की होगी। जिस विधि से गांठें बांधी गई उसी तरह से एक एक गांठ को खोलना पड़ेगा, एक एक गांठ, एक एक कॉम्प्लेक्स, एक एक ग्रंथि, एक एक संस्कार जिस तरह से तैयार हुआ है उसी विधि से उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये करकर नहीं होगा कि हम उसको खींचो तो और मजबूत होते जाएगा, और हम शायद खींचने का ही पुरुषार्थ, भरसक पुरुषार्थ बड़े ही उमंग उत्साह से कर रहे हैं, पर गांठें और ही गहरी हो रही है। इसके लिए ग्रंथियों को समझना है, ये जो भय है इसको समझना है, फियर। तो ये तीसरी विजय। चौथी विजय है अपनी कमजोरियों पर विजय। ये कमजोरियां विकार नहीं है परंतु कमजोरी है, कोई तो एक कमी है, कोई ना कोई एक ऐसी सूक्ष्म वीकनेस है, फ्लॉ है, और लंबे समय से चल रही है एक ही कमजोरी। अंतर मन में झांकना है, उस कमजोरी को देखना है क्या है। कल की अव्यक्तवाणी नीचे, बाप दादा की दो चाहना है, एक तो तुम्हारी सूरत में क्या दिखे बाप की सीरत, और दूसरा सभी खिले हुए गुलाब हो, कोई भी मुरझाया हुआ ना हो। हर्षित सदा, आज भी कहा खुशनुमा वो है जो खुशी की किरणें कि सूरज। सूरज का क्या स्लोगन क्या था, खुशनुमा वो है जिनका दिल में सूचिका सूर्य क्या उगा रहे। तो ये भी एक जीत है। उसके बाद है प्रकृति पर विजय। प्रकृति पर, प्रकृति को भी जीतना है, प्रकृति को जीतने की विधि है उसको सकाश देना। प्रकृति को जीतने की विधि है उसके प्रति कंप्लेंट ना करना, ठंड बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, ऐसा बहुत है, वैसा बहुत है, जो है वो उसे स्वीकार कर लेना। मिलिट्री में नियम होता है, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये मत पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, बोला है वो करो बस। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई, करो और मरो बस। प्रश्न नहीं पूछना, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हम भी कौन है, रूहानी आर्मी, सुप्रीम कमांडर वो है, बस बोल दिया सो बोल दिया, दैट्स इट। अब ये प्रश्न नहीं पूछते रहो। तो प्रकृति, प्रकृति को ऑर्डर करना, प्रकृति से माफी भी मांगना, प्रकृति को सकाश भी देना और प्रकृति को ऑर्डर भी करना, प्रकृति को धन्यवाद भी देना, कब से प्रकृति ने हमारी सेवा की है, सतयुग से अब तक, और हमने क्या किया उसके साथ, हमने क्या कर दिया इस प्रकृति को, जंगल तोड़, डिफॉरेस्टेशन, बिगाड़ दिया, तमो प्रधान बना दिया, भिखारी बना दिया। प्रकृति पर भी जीत पानी, उसके बाद आत्माओं के हृदयों पर जीत पानी, ये भी एक जीत है। कौन सी जीत, आत्माओं के हृदय पर जीत पानी, हृदय सिंहासन पर बैठना, अर्थात उनकी दुआएं लेना। कल की मुरली, बीच में ही मुरली में बाबा ने डबल फॉरेनर्स को उठाया और कहा यदि तुम एग्जाम्पल बन जाओ तो क्या होगा, आफरीन क्या, दुआएं नहीं, पद्मा पदम नहीं, वर्षा होगी दुआओं की। यदि तुम एग्जाम्पल बन जाओ तो क्या होगा, दुआओं की वर्षा होगी। पतम गुना, दुआओं की वर्षा होगी। वैसे हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि उस पुरुषार्थ में असंख्य आत्माओं की दुआएं जुड़ी हो, अर्थात असंख्य आत्माओं की हमने सेवा की हो। वो जरूरी नहीं है एक बोल के द्वारा या स्थूल कर्म के द्वारा, सूक्ष्म में हर आत्मा की सेवा करनी है, सूक्ष्म में आत्माओं की पालना करनी, आत्माओं में बल भरना। कल की ही मुरली बाबा ने उदाहरण दिया ब्रह्मा का, साइलेंस की शक्ति की सकाश, साइलेंस की शक्ति का सहयोग। जैसे ब्रह्मा बाप ने, दूर कोई आत्मा जिसका हिसाब किताब है या शारीरिक बीमारी है, सवेरे सवेरे रात रात जागकर उस आत्मा को सकाश दी। और सबसे बड़ा उदाहरण 1968 विश्व किशोर भाऊ, मुंबई में बीमार है, बाबा इधर मधुबन में बैठकर रात भर जागते हुए सकाश दे रहे। सबसे पहली बार सकाश शब्द का प्रयोग ही यज्ञ इतिहास में तब हुआ 68, और उसके बाद एक दो मुरलियों में भी आया, अभी 3-4 दिन पहले मुरलियों में था, सकाश देता है। तो आत्माओं की सेवा करना, संतुष्ट करना, उन्हें तृप्त करना, उन्हें वो देना जो उन्हें चाहिए, जिसकी वो कामना करते, जो जे वांछिल तोते ला वो प्राणी जात, उनको वो दे देना जिसके लिए वो व्याकुल है, प्यासी है। और सबसे बड़ी व्याकुलता और प्यास है सुख की, खुशी की, वही नहीं है, बाकी सब है उनके पास। और विकारों से जो खुशी उनको प्राप्त होती है वो अल्पकालीन है, तुरंत फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने वाली है, इसलिए उन्हें प्यास खुशी की है, वही दे देना। तो और अंतिम विजय कौन सी, अब ये बताओ, 7वें नंबर की, वो सब हो गया। परमात्म दिल तख्त पर विजय, भगवान को पर जीत, उसके हृदय पर जीत, उसके दिल को जीत लेना। वो कैसे होगा, उसकी श्रीमत पर चलकर, वो जो कहता है वो फॉलो कर आज्ञाकारी बनकर। तो ये 7 प्रकार की जीत। तो झंडा लहराया गया शिवरात्रि में, तो बाबा गीत बजा, तो बाबा ने कहा बच्चों का झंडा ऊंच महान, और ये जो झंडा है कहां लहरा है, मस्तक में और नैनों में, विजय का झंडा लहरा है। तो सबसे पहली विजय बताई विकारों पर विजय, फिर व्यर्थ और निगेटिव पर विजय, इंद्रियों पर विजय, अपनी कमजोरियों पर विजय, प्रकृति पर विजय, दूसरी आत्माओं के हृदय पर विजय और परमात्मा हृदय पर विजय, ये विजय है। और फिर एक दूसरी बात भी बीच में है जो बाबा ने कहा बर्थडे। ये बर्थडे कैसा है, इस बर्थडे की विशेषता है बताओ क्या क्या है? ये तो एक ही डेट पर है, डेट एक है, परंतु उधर डेट एक होती है पर वर्ष एक नहीं हो सकता, इधर दोनों एक ही है। एक दूसरा वहां आत्मा आत्माओं का, ये आत्मा परमात्मा का है, और एक इस वो हो गया पहले पॉइंट में, हाँ इसको शिव जयंती और शिवरात्रि भी कहते हैं, और ये इसका जो कर्तव्य का यादगार भक्ति मार्ग में है, तुम्हारे जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो भक्त अभी तक मना रहे हैं। वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बर्थडे मनाता है, यहां तुम्हारा बर्थडे सारी दुनिया मना रही है। वहां बर्थडे पे क्या बनता है? तो ये केवल संगम पर ही सेलिब्रेट होता है और कहीं सेलिब्रेट नहीं होता है। तो ये तीन बातें मुख्य थी, मुख्य मुरली तो बाद में रिवाइज करेंगे कल, पर ये तीन बातें जिसमें हमने सबसे पहली बात बताई गॉड की याद। तो क्या बनेंगे? गुड। तो अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। विकारों को जीतने के लिए बहुत चिंतन किया, विकारों को जीतने के लिए बहुत मनन किया, बहुत पढ़ाई की, परंतु फिर भी नहीं जीत पा रहे क्योंकि योग की कमी है, बाकी सब है, परंतु जब तक योग नहीं विकार पर जीत नहीं हो सकती। एक ये बात याद की या गुड मॉर्निंग की, दूसरी बात बताई जीत की, और तीसरी बात बर्थडे की। तो ये तीन बातें। ओम शांति।